उसमें बहुत कुछ कहना है। भागवत से हम लोग पढ़ेंगे तो प्रसादम के बाद एक बार हम लोग पुनः बैठते हैं और वह कथा उस समय कहते हैं। और थोड़ा सा हम पीछे का बता देना चाहते हैं अक्षय वट पर। पीछे की बहुत संक्षेप में अक्षय वट की भी कथा बताना था, इसलिए हम यहाँ समाप्त कर रहे हैं। ब्रज के कुछ प्रसिद्ध वट वृक्ष हैं, ऐसे 16 वट वृक्षों का नाम लिया जाता है, 16 विशिष्ट, उसमें यहाँ अक्षय वट भी है। यहाँ पर भगवान की यह लीला होती थी, भगवान जब सुबह में आते थे, आप लोग गोविंद लीला मृति इत्यादि अष्टयाम लीला पढ़ेंगे तो भगवान सुबह में जगते हैं, जगने के बाद तुरंत उनको स्नान कराया जाता है, गुरोहन इत्यादि किया भगवान का, पहले गुरोहन कराते हैं, नंद बाबा की सहायता करते हैं, बच्चा पकड़ते हैं, गुरोहन नंद बाबा इत्यादि बड़े लोग करते हैं, इसके बाद भगवान को स्नान कराया जाता है। और स्नान करने के बाद भगवान भोजन करते हैं गोप सखाओं के साथ, और भोजन करने के बाद लगभग 8:30 के आसपास दिन में गोचारण के लिए वन में जाते हैं, वृंदावन में जाते हैं, द्वादश वनों में जाते हैं। तो उस समय भगवान को उनकी माँ और अन्य गोप सखाओं की, प्रत्येक गोपों की जो माँ होती है, तो थोड़ा सा उनको भोजन बांध कर देती है दोपहर में खाने के लिए। तो कुछ सूखा चीज होता है तो गमछा होता है, कोई दही इत्यादि है तो मिट्टी के पात्र होते हैं तो उसमें देते हैं और फिर बांध कर लाते हैं गोप सखा। सुबह में तो खा कर आए हैं लेकिन दोपहर में कहाँ खाएंगे, तो दोपहर में सब अपने अपने घर से लाते हैं। और लाते हैं तो यह जो विशेष करके इस क्षेत्र में जो बट अक्षय बट है तो इसकी डालियों में बांध देते हैं गमछा से, नीचे रहेगा तो कोई चीटी लग जाएगी, चाहे कुत्ते चाहे कुछ जिठा खर है तो ऊपर टांग देते हैं, बांध देते, सब अपना अपना बांध देते इसी बट वृक्ष में। और दोपहर के समय यहाँ आकर उसी को खोलते हैं और बांट बांट कर खाते हैं सब, ऐसा नहीं कि अपना तो अपना अपना ही खाते हैं, दूसरों को भी देते हैं। कोई चीज विशेष वस्तु बना है तो एक दूसरे से लेते हैं देते हैं, इसी वट वृक्ष के यहाँ इसी पर खाते हैं, इस नीचे खाते हैं। यह अक्षय वट प्रसिद्ध वट है, इसका दर्शन करना बहुत पवित्र माना जाता है। यह भी वर्णन किया गया है कि एक वट वृक्ष हम लोग चर्चा करेंगे, हम लोग कल वहाँ जाएंगे, भांडीर वट, वो भी बहुत बड़ा वट वृक्ष है और यह भी बहुत बड़ा था। इसकी एक शाखा जमुना जी के दूसरे किनारे तक, इतना बड़ा वृक्ष था, इतना बड़ा चारों तरफ फैला हुआ कि इसकी कुछ शाखाएं जमुना जी के पश्चिमी तट पर है तो कुछ शाखाएं ब्रांचेस उस पार तक जाती हैं, जमुना जी के उस किनारे तक। तो कभी कभी जब भगवान को इस किनारे से उस किनारे से जाना तो शाखा पर चढ़ जाते हैं, चढ़ कर चले जाते हैं। और विशेषकर इसके शाखा पर भगवान एक लीला करते हैं कि जो इसके एक ब्रांच है शाखा है उधर जाता है तो बहुत जमुना जी के पानी के एकदम नजदीक से जाता है। तो कहीं कहीं भगवान एक शाखा पर बैठ जाते हैं और अपने दोनों पैरों को पानी में थपथपाते हैं, इतना ऊपर शाखा है और पानी नीचे से इतना ही बह रहा है, तो जाकर उसे पैर से हाथ से और कहीं कहीं उसे पकड़ कर कूद भी जाते हैं और फिर तैर कर उस पर चढ़ जाते हैं। तो और कभी एकदम जाना ही होता है तो चले भी जाते हैं, कोई कपड़ा नहीं भी उस किनारे उस इसी वृक्ष से होता था। ये बहुत बड़ा वट वृक्ष है अक्षय वट। तो यहाँ पर भगवान की लीला हुई थी, यह बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हम लोग वट वृक्ष और भांडीर वट, वो भी एक प्रसिद्ध वट वृक्ष, कल जाएंगे तो वहाँ के बीच उस वट वृक्ष के नीचे बैठेंगे तो वहाँ की भी कुछ लीला का वर्णन करेंगे। इसके पूर्व हम लोग राम घाट जो था, तो राम घाट के विषय में ऐसे ज्यादा बातें नहीं बता सके। श्रीमद् भागवतम में उसका वर्णन है, इसका वर्णन है कि एक बार बलराम जी यहाँ आए थे, ब्रज में आए थे, और ब्रज में कितना दिन तक रुके, दो महीना चैत्र और बैसाख इस दो महीने में कौन सा अध्याय है वह उसका वर्णन है। दो महीने यहाँ को रहे थे बलराम जी, जब बलराम जी यहाँ निवास कर रहे थे तो बलराम जी प्रतिदिन रास लीला भी करते थे गोपियों के विशिष्ट ग्रुप के साथ। आप जानते होंगे भगवान की भक्ति करके बहुत लोगों ने ब्रज में जन्म लिया था गोपी के शरीर में। मिथिला की कुछ स्त्रियां थीं, मिथिला की जो स्त्रियां थीं उन्होंने जन्म लिया था। इसके अतिरिक्त अयोध्या की स्त्रियां थीं, कौशल देश की स्त्रियां थीं, उन लोगों ने भगवान की भक्ति करके इसे गोपी के रूप में जन्म लिया था। इसके दंडकारण्य के ऋषि लोग थे, भगवान राम गए थे दंडकारण्य में, वन में गए थे तो वहाँ पर ऋषि को आकर्षित होकर उन्होंने भजन किया था, वो गोपी बने थे। स्वर्ग की कुछ स्त्रियाँ अप्सराएं उन्होंने कोई तपस्या करके उन्होंने भी गोपी के रूप में जन्म लिया था। वेद की ऋचाओं ने मंत्रों ने भी जप करके जैसे जैसे भक्ति करके गोपी के रूप में जन्म लिया था। उसी तरह नाग कन्याएं नागलोक की जो सर्पों की स्त्रियां थी, लड़कियां थी, बालिकाएं थी, उन लोगों ने बढ़िया से भजन किया था और भजन करके उन लोगों ने गोपी के रूप में जन्म लिया था। तो जब बलराम जी भगवान जिन गोपियों के साथ रास क्रीड़ा किए थे, बलराम जी आए थे तो उन गोपियों के साथ रास लीला नहीं किए थे। बलराम जी रास लीला किए थे जो नाग कन्याएं थी, नागलोक की स्त्रियों ने भजन करके गोपी के रूप में जन्म लिया था यहाँ पर, तो उनके साथ बलराम जी रास क्रीड़ा यहाँ पर किए थे दो महीने तक। प्रत्येक रात्रि को बलराम जी यहाँ पर रास लीला किए थे। तो वहाँ पर जो राम घाट है, तो राम एक दिन भगवान बलराम जी रास लीला कर रहे थे और उस समय उस दिन विशेष कुछ बारूणी जो एक प्रकार का नशा होता है जो पेड़ों से तो रस निकलता है कभी कभी, जानते हैं ना कि पेड़ कट जाता है तो उसमें रस निकलने लगता है, उसको बारूणी कहते हैं। बंगाल में तो वृक्ष होता है उसे काट देते हैं, उसमें मिट्टी के बर्तन में रोक लेते हैं रात भर में, सुबह में बांट में खजूर का उसे क्या कहते हैं ताड़ी, तो वही बारूणी इसी तरह का है, नेचुरल रस निकलता है,
गुड़ बनता है, गुड़ बनता है।
तो बारूणी उसको बलराम जी भी ज्यादा पी,
गुड़ तो
जो रस है तो कोई केमिकल नहीं है लेकिन ज्यादा पीने धूप लग जाने से तो वो मधु ज्यादा पी लिए थे। तो पीने से बलराम जी की आंखें घुड़ित हो गई, लालिमा आंखों में हो गई थी, इंटॉक्सिकेटेड हो गए थे। और यहाँ पर बिहार कर रहे थे, जमुना जी थोड़ा दूरी पर प्रवाहित होती थी, तो जमुना जी को उन्होंने आग्रह किया कि नजदीक आ जाओ, तो जमुना जी ने इग्नोर किया, तिरस्कार किया कि नहीं शराब पिए हुए हैं ऐसा कुछ इंटॉक्सिकेशन नहीं जाओ। तो जमुना जी को यह ध्यान नहीं, उस समय भगवान है, भगवान की लीला है, तो बलराम जी को थोड़ा क्रोध है और उन्होंने हॉल रखना से और तोड़ ताड़ कर खत्म ही करना चाहते थे और खींच दिए वहाँ पर, ऐसा कर हो गया था। तो यह बलराम जी भगवान बलराम की लीला वहाँ पर हुई थी रामघाट ब्रज के एक प्रसिद्ध विशेषकर यात्रा के क्रम में जिन स्थानों का दर्शन किया जाता है, तो इसका भी एक बहुत जय राम घाट जय राम घाट वो है, उसी घाट के लिए। और नाग कन्या गण क्या है भक्ति से जहर और शुरू नाग कैसे हो जय बीज पत्नी जय नाग कन्या गण भक्ति से जहर पहले गोविंद चरण। तो वहाँ पर नाग कन्या वही लोग बलराम जी के साथ बिहार की थी, शायद एक बिहार वन, वो भी एक प्रसिद्ध जगह है, साधु महात्मा लोग उसकी रक्षा करते हैं, गायों की रक्षा करते हैं, और अक्षय वट, और उसके बाद तपोवन। तो तपोवन आया था ना, तो ये एरिया है, हजार हजार जो गोपियां थी, तो ये कहीं जगह ऐसा नहीं कहता है, नहीं मंदिर में बैठ गई थी, छोटा सा मंदिर है, तो दस लोग, तो पूरा ये घाट है, इतना एरिया जहाँ से आप लोग वहाँ से तीर घाट तक यहाँ पर वो क्षेत्र था, इसी क्षेत्र में गोपियों ने एक महीने तक तपस्या की थी, और लास्ट दिन, अंतिम दिन जिस दिन क्षीर हरण हुआ था, वह इस स्थान पर हुआ था, कदम का वृक्ष था। तो उसको हम लोग भागवतम से एक बार फिर से बैठते हैं प्रसादम के बाद, थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन 10-20-25 मिनट में उस कथा को हम लोग पूरा कर लेंगे। भगवान समय गोपियां स्नान कर रही थी, जनरल स्नान, कपड़े रख कर तो भगवान रख दिए थे, लेकिन यहाँ का जो वर्णन है, तो जिस चीरहरण को मुख्य चीरहरण यहाँ पर हुआ था, हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुर हविष्यम भुंजानम कात्यायन अर्चनम व्रतम। सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया है कि हेमंते प्रथमे मासी, यह जो काल है शरत ऋतु है, तो पूर्व का महीना और कार्तिक शरत काल से कहा जाता है, और शरत काल के बाद दूसरा जो महीना आता है, काल ऋतु आता है, उसे हेमंत ऋतु कहते हैं। हेमंत ऋतु के प्रथम महीने में अगहन और पौष दो हेमंत ऋतु हैं, तो उसके प्रथम महीने में, अगहन महीने में, मार्ग शीर्ष जो महीना है, तो जिस दिन कार्तिक समाप्त होता है, नेक्स्ट डे से वह महीना प्रारंभ होता है। तो हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुर हविष्य भुंजानम कात्यायन अर्चनम व्रतम। मार्ग शीर्ष महीने में, अगहन महीने में, ब्रज की कुमारियों ने हविष्य खाकर उन्होंने कात्यायनी व्रत किया था, कात्यायनी देवी की पूजा की थी। यहाँ पर ब्रज कुमारिका शब्द लिखा गया है, जैसे कुमार अवस्था होता है, पांच वर्ष तक की अवस्था को कुमारावस्था कहते हैं, कुमार, और छह से प्रारंभ होकर ग्यारह तक पौगंड होता है, और ग्यारह से आगे किशोर अवस्था कहा जाता है, सोलह तक, और सोलह के बाद यौवन अवस्था कहा जाता है। तो इस व्रत को किसने किया था? नंद ब्रज कुमारिका है, ब्रज की वो लड़कियां थी जो अभी कुमारी अवस्था, चार वर्ष पांच वर्ष की अवस्था, पांच वर्ष से अधिक उम्र की कोई भी गोपी ने कात्यायनी व्रत नहीं किया था। आप लोग जितनी गोपियों का नाम सुनने हैं, जानते हैं, राधा रानी, किसी ने नहीं किया था कात्यायनी व्रत, क्योंकि व्रत किया गया था कि कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। तो सभी गोपियां, जितने आप गोपियों का नाम सुनते हैं, सभी गोपियां विवाहित थीं। तो जब विवाहित हैं, तो फिर पति के रूप में कृष्ण को प्राप्त करने के लिए व्रत करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। तो ब्रज की वे कुमारियां, वे बच्चियों ने, लड़कियों ने किया था जो पांच वर्ष की कम की अवस्था के थी, और सभी अविवाहित थी। यह कौन थी? जब भगवान राम जंगल गए थे, तो भगवान राम सीता जी के साथ थे, और दंडकारण्य के जो ऋषि लोग, ऋषि मुनि थे, तो वे लोग तो शांत दास अथवा वात्सल्य, इस रूप से भगवान की आराधना करते हैं, विशेषकर दास्य रूप से। लेकिन जब उन्होंने देखा श्रीमती राधा रानी का प्रेम, श्रीमती सीता देवी का प्रेम श्री राम से, जो माधुर्य भाव की उपासना थी, तो उन ऋषियों के मन में भी उत्कट इच्छा हुई कि हम लोगों को भी माधुर्य रस की प्राप्ति हो। तो मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर ले कि हम लोगों को जैसे सीता जी को आपने स्वीकार किया है पत्नी रूप में माधुर्य भाव से, वैसे हमको भी हम लोगों को भी स्वीकार कीजिए। तो भगवान ने, भगवान राम उनको मन ही मन वरदान दिए थे, इस बार तो नहीं, लेकिन मेरा जो भावी अवतार होने वाला, मैं पुनः आने वाला हूँ, तो उस समय मैं आप लोगों को अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करूंगा, आपके साथ राज क्रिया करूंगा। तो उसी समय उसी समय से दंडकारण्य के जो ऋषि महात्मा थे, वो उत्कट भक्ति के लिए प्रयास करने लगे, प्रयास करते 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 कि हम लोगों को नेक्स्ट जो भगवान का अवतार होना है, माधुर्य भाव से आराधना करनी है, रासलीला भगवान के साथ करना, तो उसी समय भक्ति कर रहे थे। तो जब उन ऋषियों मुनियों का लाखों वर्ष तक भजन में लगे रहे, जब उनका शरीर छूटा, तो वे लोग ब्रज में जन्म लिए थे, गोपों के परिवार में, गोपी के रूप में छोटे छोटे उनका जन्म हुआ। तो ये जो कात्यायनी व्रत जो जिन गोपियों ने किया था, वे अपने पूर्व जन्म में कौन थे? दंडकारण्य के ऋषि मुनि थे। तो हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारी का चेरु हविष्य भूंजानम कात्यायन अर्चनम व्रतम। कात्यायनी अर्चन व्रत किए थे। जो भगवान की एक शक्ति है, अतरंगा शक्ति है, उसकी वो पूजा किए थे। भगवान की लीला शक्ति, अतरंगा शक्ति, उसकी आराधना किए थे। उसका नाम है कात्यायनी। कात्यायनी क्यों इसका नाम है, शक्ति का? एक कात्यायन नाम के ऋषि थे, महात्मा थे, मुनि थे, उन्होंने इस शक्ति की आराधना करके उनको सिद्धि मिली थी, इसीलिए इस शक्ति को कात्यायनी कहते हैं। कात्यायनी मतलब जिस भगवान की अतरंगा शक्ति की प्रथम बार पूजा करके प्रथम सिद्धि जिसको मिली थी, कात्यायन ऋषि थे, तो ऋषि के नाम से इस शक्ति का नाम है कात्यायनी। कात्यायनी व्रत किए थे। जो 4-5 वर्ष की लड़कियां थी, बालिकाएं थी, यह आश्चर्य होता कि उस अवस्था में पति और इस तो संभव नहीं होता है सोचना, इस तरह की मानसिकता, इस तरह की, ये जो किसी व्यक्ति का जो शारीरिक और मानसिक विकास होता है, तब उसमें भावना आती है पति विवाह होना है नहीं होना है ऐसे। तो वो लोग न तो शारीरिक रूप से विकसित थी, शारीरिक रूप से 4 वर्ष की लड़की को क्या विवाह की चिंता लगती है, किसे विवाह होगा, कहाँ विवाह होगा, तो जानती भी नहीं है, और बुद्धि भी विकास नहीं, शारीरिक भी विकास नहीं होता है। स्त्रियां विकास करते, शारीरिक विकास होता है ना, शरीर ऐसा मैच्योर हो जाता है, इसके बाद साइकोलॉजिकल साइकिक विकास भी हो जाता है, मानसिक रूप से भी प्रौढ़ हो जाती है। तो इस अवस्था में कैसे उनको विवाह की बात आ रही कि हमारे यहाँ पति हो, उसी ने हमें आराधना करते रोती रहती थी। क्योंकि एक तो है कि जो प्रेम है, वास्तविक भगवत प्रेम है, तो शारीरिक विकास अथवा मानसिक विकास इसमें अपेक्षा नहीं है कि शारीरिक विकास होगा जैसे मानसिक विकास होगा तब है। यह तो जो प्रेम है, ये इन ऋषियों ने भले ही अभी 4 वर्ष के थे, लाखों वर्ष तक इसी साधना की थी, इसीलिए उन कुमारियों में 4 वर्ष की 5 वर्ष की जो बालिकाएं थी, उनमें यह भावना आई, पहले के पूर्व जन्म का संस्कार था, इसीलिए वे कात्यायनी देवी की पूजा प्रारंभ की थी। चेरुर हविष्य भुजानम, वो खाती क्या थी? हविष्य खाती थी। प्रभुपाद जी लिखे हैं हविष्य की बात है, तो मूंग दाल और चावल और थोड़ा सा उसमें हल्दी और जीरा डालकर बॉयल कर लेती थी, बस यही खाती थी। एक महीना नमक उसमें डालती नहीं थी, अलग से जरूरत है कर लेती थी। देखिए 4 वर्ष की 5 वर्ष के लिए कितना बढ़िया से कर, चेरुर हविष्य भूंजानम कात्यायन अर्चनम व्रतम। तो तो संक्षेप में सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते, फिर इसके बाद दोबारा वर्णन क्या करती थी। ब्रज से, ब्रज के विभिन्न गांवों में उनका जन्म हुआ था, तो ये लोग एक क्या करती रहती थी कि चारों तरफ से इकट्ठा होकर शाम को विशेषकर संध्या के समय आपस में रोती रहती थी और कहती थी, एक छोटी सी बालिका दूसरे को कहती थी कि तुम्हारा विवाह कृष्ण के साथ होगा, और वह कहती थी नहीं तुम्हारा विवाह कृष्ण के साथ होगा। तो संवेत रूप से वो चाहती थी हम सबों का विवाह कृष्ण से हो जाए, तो इसके लिए वो रोती रहती थी कि कृष्ण हम लोग कैसे पति रूप में प्राप्त होकर पति रूप में, तो प्रसाद आ गया है, इसके बाद प्रसाद हम ग्रहण करके फिर से इसको पूरा करते हैं।